ओम शांति, गुड इवनिंग। और जैसे कहते हैं ना, वेलकम ब्रेक के बाद। ये सेशन, ये सत्र हम शुरू करते हैं। और सेशन है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और हर्मेनोटिक्स। अब ये शब्द काफ़ी डिफिकल्ट होगा प्रोनाउंस करने में। एक्चुअली इसको लिंग्विस्टिक्स भी कह सकते हैं, लैंग्वेज को ही लेके है किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। और मंच पे बैठी हुई बहन का मैं स्वागत करता हूँ। बहन का लौकिक नाम सिस्टर वीरा है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वेरोनिका। और पिछले 18 साल से ज्ञान में है, 1993 में ज्ञान में आई हैं। और रहती हैं, शहर का नाम है मॉन्टेनेग्रो, और ये रशिया में है। बहन क्लास इंग्लिश में कराएगी, लेकिन सुविधा होगी कि उसका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को मिलेगा। तो मैं सिस्टर वेरा से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट सिस्टर वेरा टू कम एंड टेक द पोडियम। वेलकम सिस्टर।
Om Shanti, dear brothers and sisters, I am here to share with my experience, with my educational experience and in research also. It's regarding linguistic. Now translation will be in Hindi. I graduated in philology, for philology in Moscow University, Lomonosov, and my modest research regards text linguistic interpretation, decodification of ideas and messages which are hidden in the textual structures. So a little bit of terminology I will introduce, because it's anyway, understanding is mental activity is absolutely indispensable for all regards in our life. You, I agree.
हमारे जीवन में, जस्ट मिनट, मन का हर काम में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। आप मानते हैं ना? रेज योर हैंड्स, दे एग्री।
यस, ऑफ कोर्स, इट्स एविडेंट, ऑब्वियस प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। And the science hermeneutics is only one science which give us approach and tools how to understand and at the same time provide criteria for analysis. We have to
ये एक विज्ञान है जिसके आधार पे आप अपने समझ भी सकते हैं और उसके आधार पे विश्लेषण भी कर सकते हैं। किसी भी कही हुई चीज़ का आप विश्लेषण करना और समझना, दोनों इसमें हर्मेन्यूटिक्स नाम का जो विज्ञान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है।
हर्मेन्यूटिक्स इज नोन एज अ साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन।
जस्ट वन सेंटेंस इज प्लीज। ये जो विज्ञान है किसी भी चीज़ का अर्थ समझने वाली घटना है। इंटरप्रिटेशन करना माने किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम लोग अंदर मन में जो बातें करते हैं वो है। किसी चीज़ का भाव समझने का प्रयोग ये है। प्लीज।
फॉर इन ब्राह्मिन लाइफ इट्स वेरी एक्चुअल क्वेश्चन, हाउ वी make interpretations of Baba's elevated versions, how we understand his messages, and how we are able to to interpret truth, truth and essence of Murli.
सत्य को समझने के बाबा के जो वर्जन्स हैं हमारे सामने जो महावाक्य आते हैं उनको हम कैसे समझते हैं उनका क्या अर्थ करते हैं उसको जीवन में अपनाने के लिए क्या क्या अने उपयोग करने की विचार करते हैं वो है प्लीज
Hermeneutics is very flexible science because it uses the tools of other science such as psychology, philosophy and text linguistic.
The third one?
Text linguistic.
ये जो विज्ञान है उसमें तीन विज्ञानों का समावेश हो जाता है उसमें मनोविज्ञान आता है दर्शन आता है और जो लिखा हुआ शब्द है उसका भी विज्ञान आ जाता है
First level of analysis or interpretation regards a superficial level of the text. It's called architectonics, architecture or building of the text.
कुछ लोग सौंदर्य की दृष्टि से भी उसका ने अर्थ करते हैं और वो थोड़ा ऊपरी सतही उसका ने आनंद रहता है उसका अर्थ घटन होता है
Architectonics, it's the evident form of the text, include title, first of all. Title introduce the topical essence of the text, usually.
सामान्य तौर पर जो लिखे हुए शब्द हैं, उसका आर्किटेक्चर माने रचना शास्त्र है. उस रचना शास्त्र के हिसाब से आप उसका समझते हैं और ऊपर का टाइटल जो है हाँ शीर्षक समझने का प्रयत्न करते हैं
इन आवर केस स्टूडेंट्स गुडली स्टूडेंट्स वी हैव टू डील विद Murli इट्स आवर मेन फूड द मेन फाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड से एंड इट्स फ्रेम of the text frame its essence at the beginning and essence at the end of the text
essence in the beginning
essence and essence yes frame
baba kis ab jaise aap Murli padhe aur baba ko sune to dono mein fark kahan lagta hai malum hai baba jis shabd par zyada bhar deta hai wo accent bolte hain उस एक्सेंट का एक्सेंट माने भार देना किसी शब्द पर और अंत में उसका सार क्या है वो हम शब्द के आधार पे ही समझ सकते हैं जो बोला है जो लिखा है उसको हम कैसे लेते हैं उस हिसाब से समझना ये इसमें आ जाता है ठीक है प्लीज
देन इट्स क्वेश्चन क्वेश्चन इट्स अ टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग
प्रश्न होता है उसमें तो ऐसे प्रश्न क्यों पूछा जाता है तो कि हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वो समझने के लिए प्लीज
एंड द आंसर इज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग
आपको प्रश्न पूछा गया आपने उसका जवाब दिया आपका जवाब अगर सही है तो आप समझ गए हैं उसकी सबूत है और गलत जवाब आया तो इसका मतलब है आप वो नहीं समझे उसका सबूत है
Then it's song. Song it's a collocation which does not belong to the proper texture of the text itself. It's a different genres, literature or folkloric.
अब बाबा की Murli में गीत भी आते हैं तो गीत वो Murli का अंश नहीं है लेकिन वो अलग ही प्रकार की एक भूमिका उसके द्वारा हमारे सामने रची जाती है प्लीज
Hermeneutics as a science takes as a object of research scriptures spiritual texts ancient literature
पुराना जो हमारा साहित्य है बहुत पुराना किसी भी यानी भाषा का उसको समझना और उस संदर्भ में क्या बोला गया आज उसका क्या अर्थ निकलता है इस प्रकार के अनेक प्रकार के उसमें से अर्थ निकलते हैं मे आई गिव एन एग्जाम्पल बाइबल में जैसे
mainly the object of research in hermeneutics is Bible and other scriptures as well
ये जो विज्ञान विकसित हुआ वो बाइबल के आधार पे हुआ, और अन्य भी जैसे पौराणिक ग्रंथ हमारे हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनका हम क्या अर्थ करते हैं। सिर्फ एग्जांपल सिस्टर, गो शब्द है सो मेनी मीनिंग्स इन वेदा, 17 to 19 मीनिंग्स ऑफ गो, वी अंडरस्टैंड एज इट एज ए काउ, बट देन इट हैज सो मेनी अदर मीनिंग्स। इस संदर्भ में हम कौन से संदर्भ में कौन सा अर्थ लेंगे ये हमारे पर है, हमारी समझ और हमारी नासमझी पर उसका आधार है। प्लीज,
Why actually interpretation is indispensable regarding old ancient texts?
Why? Please.
The matter is that the distance of time makes the understanding different because the reality is changing during the time. And then the matter of translations. Numeral translations could have such a text. And translation is always variable, always connected with loss of meanings, because more intervention past the text of human aspect. Okay. Yes, then.
Okay. अब प्रश्न ये है कि हमें इंटरप्रिटेशन का जरूरत क्यों पड़ती है इस अर्थ गठन करने की। लिखा गया किसी युग में, उस समय उस शब्द का कोई अर्थ था, हम उस शब्द को एक नए अर्थ में ले रहे हैं, कोई नई समझ है। हमारा समय भी बहुत बदल गया है, यानी पुराने समय में किस भाषा में किस क्यों लिखा गया था, और आज हम उसी चीज़ को वैसे ही लेना चाहें तो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि पूरा वो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, संदर्भ ही हमारा बदल गया है। तो इसलिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो एक ही स्क्रिप्ट के, एक ही लिखी हुई जो हमारी लिखत है उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तो अनेक अर्थ ना निकलने पाए और जो मूल उसका भाव रह जाए, इसलिए ये विज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। प्लीज,
हर्मेन्यूटिक्स यूजेस आल्सो इंस्ट्रूमेंटारी ऑफ ट्रांसलेशन थ्योरी,
अनुवाद भी इसमें आ जाता है। अनुवाद के कारण बहुत सारी अर्थ बदल जाता है। आप में से कईयों का अनुभव होगा कि बाबा की मुरली जब चलती है और तुरंत ही उसका ट्रांसलेशन होता है, तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं जो हमें उस सेंस को व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो उसमें भी हमें समझने की ज़रूरत है। प्लीज,
ट्रांसलेशन थ्योरी प्रोवाइड्स टू अस द प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट It's a common component of different interpretations. It's comparative linguistics.
तुलनात्मक हो जाता है, किसी वाक्य को मैं किसी तरीके से अनुवाद करूं, दूसरा कोई करेगा तो और तरीके से करेगा। जैसे बहन जी बोल रही हैं, मैं मरी तरीके से कर रहा हूं, दूसरा कोई बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा। तो इस तरीके से बदलता हुआ रहता है व्यक्ति और भाषा के संदर्भ में। प्लीज,
For decodification of the meaning, real meaning or idea, authorial idea is very important. The image of writer, of author, who is writing, the subject of the person who is writing.
अब भाषा में उन्होंने, जिसने लेखक ने जो शब्द उपयोग किया वो किसने लिखा है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। कोई सामान्य आदमी बोल रहा है और कोई विद्वान बोल रहा है, भाषा में फर्क पड़ जाता है। वन एग्जांपल मे आई गिव, लंडन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, ऐसा अगर एक गीत है बच्चों का, वो बच्चों को गवाते हैं, वो नाचते हैं, और वही वही गीत जब T.S. Eliot जैसा आदमी लिखता है तो उसमें क्या टूट रहा है कुछ ही अलग ही होता है। उसके लिए वो सिर्फ रिदम है, और T.S. Eliot जैसे कवि के लिए कुछ और उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमारे और आपके बीच का ब्रिज शायद टूट रहा है, तो वो ब्रिज फिजिकल ब्रिज नहीं है, कम्युनिकेशन वाला ब्रिज है। तो इस तरीके से कौन बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके आधार पे होता है। प्लीज,
इन मुरली फॉर एग्जांपल वी कैन कन्वे थ्री subjects, three individuals. You know who are these individuals?
मुरली में हम तीन बोलने वालों को हम पहचान सकते हैं जी.
Who?
कौन कौन है?
Are subjects of मुरली.
मुरली के सब्जेक्ट कौन हैं? सब्जेक्ट ने विषय कौन कौन से हैं?
Do you have some idea who are subjects? two fathers and children. Yes, three.
दो पिता और बच्चे, ये तीन हुए ना. दो मैंने, एक तो पारलौकिक, दूसरा अलौकिक, और तीसरे हम. ठीक है, प्लीज.
एंड ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट्स हैज ओवन सर्कमस्टेंसेस एंड ओवन मैनिफेस्टेशंस इन द टेक्स्ट.
अब तीनों की भूमिका अलग है, और तीनों की परिस्थितियां अलग हैं, तीनों की समझ अलग है. कौन किस वाक्य को किस तरीके से लेगा, कोई भरोसा नहीं, कोई श्योरिटी नहीं उसके आधार पे. इस तरीके से हमें देखना है जी.
फर्स्ट प्रिंसिप टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ ईच ऑफ सब्जेक्ट इज नेमिंग और अपील और रेफरेंस स्वीट चिल्ड्रन.
इसलिए एक दूसरे का सम्मान रखना बहुत जरूरी है उसमें. बाबा जिस भाव से बोल रहा है उसका सम्मान करें, ब्रह्मा बाबा जिस भाव से उसमें इंटरवीन करता है वो उसका सम्मान करें, हम भी, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है. ठीक.
The individual style of author is manifested by a choice of linguistic principles or details, different details, and it expresses very often in repetitions.
हमारी पसंद जो है, choice जिसको बोलते हैं, वो हमारे शब्दों के चयन और उसको बार बार बोलने में प्रकट होती है. मुरली में भी जो चीज़ें बार बार आ रही हैं उसको repetition बोलते हैं ना, बार बार बोलना, उसमें से भी व्यक्त होता है.
By repetitions we can recognize the subject of the text. For example, 2 days ago in Murli text the word understanding was repeated 12 times. I made
which word?
Understanding. Oh, understand word.
दो दिन पहले की, हाँ, दो दिन पहले की मुरली में बाबा ने अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के बारे में 12 बार उल्लेख किया था. 12 बार.
In our 12 times. Terms, it's called emphasis, actualization. It means that for this subject of the text, for author, it's very important understanding as a notion.
इसलिए मुरली में जो शब्द बार बार आ रहा है तो उसका हमें महत्व उस तरीके से लेना चाहिए. और आप, हम सबका वैसे अनुभव ही है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, कितनी बार आता है, कितनी मुरलियों में नहीं आया है बोल सकेंगे हम? एक बार तो आता है. इस तरीके से यानी क्यों उसको बार बार बाबा बोल रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या, यानी हमें क्या समझना चाहिए उसके आधार पर. बहुत बढ़िया.
बाबा इवन मेंशन थ्री कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
बाबा ने तीन प्रकार की समझ की बात की है.
And each of us think, obviously, to belong to the first category because we consider us to be clever on the top of all.
हम अपने आप को पांचवी कैटेगरी में रखते हैं. बाबा तीन प्रकार की समझ की बात करता है और हमको अपने आप को स्मार्ट समझ के पांचवी कैटेगरी में समझते हैं.
But in this case, we could not be guided by intuition or without any scientific criteria or scientific principles.
Okay. Usha Ben is likely to come soon. At that time, we'll have to stop. Okay. But then this presentation, ये हमारे लिए जो presentation है ना, ये office में आपको मिल जाएगा. ठीक है? फिर भी जब तक आ रही हैं तब तक हम हमारी बात चालू रखते हैं. What did you say, sister? No, no, it's okay, please. Abhi aayengi, when she comes, we'll have to stop. Because okay. It's simply time, 5 minutes time for us. Okay, please.
So just to the idea, the main idea or main main imperative of the text must be justified scientifically.
जो लिखा हुआ है उसको वैज्ञानिक तरीके से हमें न्याय देना चाहिए, हा? नहीं तो होगा क्या कि हम वो कह कुछ रहे हैं, हम कर कुछ रहे हैं. प्लीज.
And classifying the genre of Murli, we linguistic also provide us the classification of different texts. It's argument.
भाषा के आधार पे ही उसके यानी हमारी यानी जो चर्चा या तर्क जो दिया जाता है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है.
आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन वैलिड लॉजिक लॉजिक थ्रू थ्रू रीजनिंग.
हम तर्क करेंगे, उसके आधार पे हमारे यानी चर्चा के मुद्दे खड़े होंगे और रीज़न माने हम लोग उसके कारण में मूल कारण में जाने का प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पे भी हमें मुरली समझनी चाहिए. प्लीज.
द मेन एक्सपेक्टेशन और द मेन एटीट्यूड ऑफ द ऑथर और टारगेट इट्स टू कन्विंस द ऑडियंस द दोस हु रीड और लिसन रिसिपिएंट ऑफ द टेक्स्ट टू कन्विंस.
सुनने वाले के गले के नीचे वो बात उतरे, इस तरीके से उसका अर्थ हमें करना चाहिए. अगर सुनने वाले के गले में बात ही नहीं उतर रही है क्योंकि हम उसको योग्य परिप्रेक्ष्य में नहीं रख रहे हैं तो मुश्किल हो जाती है. जो असर होनी चाहिए वो नहीं होती.
Conviction is the first step for developing of faith. Baba mentioned, if you don't understand, you can't
have faith. अगर समझ में नहीं आया कुछ भी जो कहा जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारी श्रद्धा भी नहीं बैठेगी. फेथ बोला बहन जी ने, फेथ नहीं होगा. समझ के आधार पे श्रद्धा जमती है.
विक्ट्री इज इन फेथ.
हाँ, और अगर श्रद्धा है तो फिर हम विजयी होते हैं. विक्ट्री बोला बहन जी ने, विक्ट्री माने विजय प्राप्त करते हैं. तो पहले समझ चाहिए, समझ के आधार पे श्रद्धा बनती है और श्रद्धा के आधार पे हम विजय पाते हैं. प्लीज.
इंटरप्रेटिंग द एटीट्यूड ऑफ ऑथर द सब्जेक्ट ऑफ ऑथर वी डेफिनेटली हैव टू कंसिडरेट कॉन्टेक्स्ट.
वो पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई उसके लिए हमें संदर्भ भी याद रखना पड़ेगा. किस संदर्भ में बाबा ने ये कहा. पूरी मुरली पढ़ें, उसके अंदर का एक अंश हम लेके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर डाल दें और फिर कहें कि बाबा ने तो ये कहा, ऐसा नहीं. पूरे संदर्भ में उसका क्या स्थान है वो भी देखना पड़ेगा. प्लीज.
कॉन्टेक्स्ट इज नॉट ओनली लिंग्विस्टिक रियलिटी ऑफ कोर्स, इट्स हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सो फार.
और ये संदर्भ है ना, सिर्फ भाषा के संदर्भ की बात नहीं है, उसमें इतिहास भी आ जाता है, उसमें संस्कृति भी आ जाती है. कुरुक्षेत्र जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. कुरुक्षेत्र हमारे लिए कुछ है और दुनिया के देशों के लिए कुछ है. क्यों? तो कि कुरुक्षेत्र समझते ही हमको क्या याद आता है, महाभारत याद आता है, और दुनिया वालों को हरियाणा का एक नगर याद आता है. इस तरीके का अर्थ बदल जाता है. प्लीज.
From general linguistics, we know the distinction between meaning, sense, and significance.
अर्थ में, उसके भाव में और उसके महत्व में फर्क पड़ जाता है जहाँ जिस संदर्भ में बात की गई है उसके आधार पे. Please.
In discourse, in the speech, all the units have meanings. But the sense is manifest just in connections with other words in the context.
शब्द का अर्थ कुछ होता है, लेकिन जिस क्रम में और जिस संदर्भ में उस शब्द को रखा गया है वहाँ उसका अर्थ कुछ और हो सकता है.
And signification reveal itself in context only. Without considering the context, we can't make conclusions, judgments about signification or significance.
हाँ, किसी भी तरीके से हम उसको context के बाहर निकाल के अगर हमने बात की तो हम उसके आधार पे कोई निर्णय नहीं ले सकते, ना कोई हम comment या उसके ऊपर हमारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत होगी.
The language or discourse is the system of signs and codes.
अब भाषा क्या है? ताकि विज्ञान है. और कोड माने क्या है? जैसे मैं यहाँ पे आई एम गिविंग एक एग्जांपल ऑफ द कोड. सिर्फ एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये सत्यता लिखा है. तो सत्यता का कोई स्थूल स्वरूप नहीं होता, लेकिन मैं गाय लिख दूँ तो गाय क्या है? वो गाय नहीं है. गाय के लिए बनाया गया कोड है, संकेत है. हम बिंदु बनाते हैं कागज में, तो बिंदु वो बाबा नहीं है. बाबा के लिए दिया गया सिंबल है, वो प्रतीक है. वो इस तरीके से लेना है प्लीज. ये तो वैसे समझ में आएगा. सत्य के बारे में जो क्या क्या कहा गया है, सत्य एक है, सत्य संदर्भ में होता है, सत्य
Yes, for atheistic mentality, truth doesn't exist because it's relative and it's not.
संदर्भ में होता है वो सत्य. हाँ, उसकी वो होता नहीं है, लेकिन किसी संदर्भ में उसकी सत्यता आ जाती है. ऐसा यहाँ लिखा है, truth doesn't exist. फिर each one has their own truth. हर एक का अपना एक सच होता है, है ना? हर एक का अपना एक सच होता है.
The science provide for us criteria how to justify truth.
तो ये विज्ञान जो है ना, हमारे लिए एक क्राइटेरिया माने एक मापनी हमारे लिए दे देता है, जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि किसको हम सचमुच में सच माने. ऐसा
फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्रूथ इन चाइनीज we can't understand because we don't have enough knowledge of alphabet.
अब जैसे सत्यता यहाँ हिंदी में लिखा है, उधर चाइनीज भाषा में लिखा है, तो वो हम नहीं समझ पाएंगे. तो लिखत में भी आ जाता है, यानी वो भाषा के अक्षरों के ऊपर भी उसका निर्भर होना है.
Different code systems.
Different?
Code systems. In different languages.
यहाँ सत्यता हिंदी में ऐसे लिखा है, चाइनीज में ऐसे लिखेंगे, जर्मन में कुछ और तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, इस तरीके से अलग अलग कोड सिस्टम बदल गई है. हम सबके बीच में एक कॉमन कोड है, इसलिए हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं. हाँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर पंजाबी में बोलने लगूँ तो हमारे पंजाबी मित्र ही समझ पाएंगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे. ये कोड है.
There are other words which belong to the synonymic range of understanding.
कुछ शब्द पर्यायवाची होते हैं, एक ही शब्द के बारे में अनेक शब्द बोले जाते हैं.
Synonyms.
जैसे मैं आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ रिवर इन हिंदी. नदी बोलते हैं ना हम लोग, उसको क्या क्या बोलते हैं मालूम है? सरिता, तटिनी, निम्नगा, तरंगिणी, निर्झरिणी, जलमाला. अब किस संदर्भ में हम बोलेंगे? जलमाला का कहाँ उपयोग करना है, निर्झरिणी का कहाँ उपयोग करना है, ये अलग अलग होता है. उसकी पर्यायवाची है, कहेंगे इसका अर्थ नदी ही होता है, लेकिन कुछ और भी होता है. प्लीज.
नाउ वी हैव टू स्टॉप.
ओके. ओम शांति, ओम शांति. ये मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफिस में मिलेगा. हिंदी तो फिर मैं करके भेजूं, फिर ये यहाँ से भेजें, ऐसा होगा. मैं हिंदी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास. डाल देंगे, ठीक है.
दे वांट इट अवेलेबल फॉर हु इज रियली इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक. आई डोंट थिंक इट्स द सेम फॉर ऑल.
जिनको इस विज्ञान में, हर्मेन्यूटिक्स में रस है, वो बहन जी ने उसकी फोटोकॉपी करवाई है. जिनको रियली इंटरेस्ट हो भाषा का अध्ययन करके, तो उसमें इस अलग एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो
टर्मिनोलॉजी एंड टॉपिक्स दिस इज ओनली पार्ट वन द पार्ट टू विल कम नेक्स्ट
हाँ ये पहला भाग है इसके बाद में दूसरा भाग आएगा सिस्टर आई विल कलेक्ट योर ईमेल एंड देन वी कैन कम्युनिकेट एंड देन आई विल शेयर इट विद द मास्टर्स हियर
ओम शांति
ओम शांति ओम शांति थैंक यू वेरी मच सिस्टर यू ब्रॉट इन a wonderful subject may I tell you sister that I also I taught 40 years the English language and I have studied linguistics also in that sense I enjoy it thoroughly and then I tried to make them understand the significance of the words written here aap sabka thoda sa samay isme gaya hai lekin ek naya pehlu hai kripya murli ke shabdon ko मुरली से बाहर निकाल के नहीं उसी संदर्भ में पढ़ के बाबा किस भाव से किस भावना से कह रहा है बाबा को सामने इमर्ज करके बाबा का चेहरा हमको हमारे सामने दिखेगा दादी गुलजार के माध्यम से बोलते हैं तो वहाँ उनका चेहरा क्या बोल रहा है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा मैं किसी को आऊँ और बोलूँ आइए महाराज तो अलग अर्थ हो गया और कोई सचमुच में महाराज आ रहा आइए महाराज फर्क पड़ गया शब्द वही बोले गए लेकिन किस भाव से किस तरीके से बोले गए वैसे बाबा की मुरली में से भी हमें संदर्भ का ध्यान रखना जरूरी है अब एक अनाउंसमेंट है सूरज भाई का ग्रुप करो तपस्या हरो समस्या क्या बात है मैं जो चार नंबर का ग्रुप है उसको अभी डिनर के बाद ऊपर हॉल में बैठना है ऑडिटोरियम बी में बैठना है 8:45 को सब हॉल में पहुँच जाएँ ठीक है और ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा था वो आपको ऑफिस में से मिल जाएगा जिस जिसको इंटरेस्ट हो अंग्रेजी समझ सकते हैं वो अंग्रेजी ही ले लें क्योंकि उसका अनुवाद भी होगा तो थोड़ा सा रूपांतर हो जाएगा कोई अनुवाद उतना अच्छा नहीं होता राइट तो हाँ डाल देंगे उसको डाल देंगे प्रेम से आपने ईमेल एड्रेसेस दे रखे हैं यहाँ पे उसके ऊपर पहुँच जाएगा ठीक है ओम शांति अब दीदी को बुला लाइए कोई बात नहीं अब आप भी आ जाइए अच्छा रेड लाइट हो जाए